स्टार्ट।
ऑनलाइन सब बच्चों को बेटा गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग
सर।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उन बच्चों को भी जो लैपटॉप लेने जा रहे हैं। सर कैंसिल नहीं हुआ। सब बच्चों को गुड इवनिंग। अब सब कोई अपने परिश्रम से अर्जित किए हुए लैपटॉप से लोग पढ़ेंगे, ऐसा सरकार की अपनी इच्छा है और मजबूत इरादे, अच्छी सोच, बड़ी रोड, ये है इस सरकार का, बहुत बढ़िया कदम है। चलिए आज हम लोग एकदम लीक से हट के चल ही रहे हैं और जजमेंट राइटिंग तो चलिए अपने कोर्स का कोर्स वर्क था, आज अपने एकदम प्रदेश से हट के, क्योंकि हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं और यूपी की कोचिंग है, मगर फिर भी अपने लीक से हट के फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादातर मुझसे कहा कि आप बोल देते हैं, आप लोग एक बार रीड आउट करा देते हैं चाहे समरी वे में ही, वो चीज़ें हम लोग के लिए फिर वो काम करने पे पढ़ने पे मन करता है, तो ठीक है क्योंकि एमपी का माहौल चल ही रहा है, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि अभी यूपी का हम लोग पढ़े ही हैं, यूपी रेवेन्यू कोड और रेंट कंट्रोल वगैरह, तो एमपी का भी 6-7 बैक टू बैक अगर कर लें तो सेक्शंस में डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उसी को देखना है, कुछ पुरानी भी चीज़ें रिवाइज करेंगे और उससे ये हम लोग काम करेंगे। तो आज से टुडे इज 24th December 2021, अगेन आई एम अमित सर, विथ मी अंकित सर, and we are with beer act, new beer act of MP,
land Madhya Pradesh land revenue code 1959,
MP LRC na? MP land revenue code 1959, hum log ye dekhne chal rahe hain. Acha Madhya Pradesh mein jab exam hoga aap log ka to MP ka land law aur MP ka accommodation ek major role play karta hai fail karane mein, क्लियर है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमपी का लैंड लॉ, एमपी का लैंड रेवेन्यू और एकोमोडेशन, यानी जिसको आप रेंट कंट्रोल भी कह सकते हैं, वहाँ एमपी एकोमोडेशन कहते हैं, और जजमेंट राइटिंग मेंस में। तो अब की उस हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, उसको टैकल करना है उस प्रेशर को, तो आज से हम लोग हिंट वाइज थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज चलेंगे। वी हैव नो नोट्स, हमारे पास कोई नोट्स प्रिंटेड नहीं है, केवल हम लोग के पास बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट ही हम लोग की नोट्स बन जाएगी, क्योंकि वहाँ प्री और मेंस के क्वेश्चन कोई अलग नहीं होते, एक ही क्वेश्चन होता है, वही बेयर एक्ट बेस्ड होता है। तो आज से हम लोग एमपी एलआरसी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ रहे हैं, आज क्लास होगी, कल तो क्रिसमस है, लैपटॉप डे है, ठीक है, संडे को तो नहीं पढ़ते हैं, मंडे को जो बच्चा आना चाहेगा आ जाएगा, मंडे को भी हम क्लास लेंगे, जो रेवेन्यू कोड बचा होगा कोशिश करेंगे उसको बाइंड अप कर दें, उसके बाद शेड्यूल बता दें, उसके बाद क्लोज रहेगी कोचिंग, और फिर फोर्थ को ना, फोर्थ को यानी फोर्थ को फिर रीओपन होगी, और यही एमपी का जो पोर्शन बचा होगा, एकोमोडेशन बचा होगा, हो सकता है लिमिटेशन भी बैक टू बैक कर दें एक दिन में, वो काम करने के बाद फिर अपने हम लोग रेगुलर शेड्यूल पे आ जाएंगे, मतलब आईपीसी जो हमारा आपसे प्रॉमिस था। तो इस सीरीज़ में हम लोग एमपी लैंड लॉ, एमपी एकोमोडेशन, और कोशिश करेंगे लिमिटेशन एक्ट, अगर एक दिन में हो गया तो भी कर देंगे, जिससे आपका पूरा पैकेज रेडी रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। तो चलिए आज से हम लोग MPLRC पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड आप सब बेरैक निकाल लीजिए। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो किसी के बारे में जानना होता है, जो वहाँ क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने चैप्टर, कितने सेक्शन, कितना शेड्यूल और इसका इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट तो गांधी जयंती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड अक्टूबर 1959, वो तो कभी भूलेगा ही नहीं।
नोट कर लीजिए
जो इसका इन्फोर्समेंट है MPLRC का।
ये प्री में बहुत पूछा,
बहुत बार पूछा गया गांधी जयंती, तो ड्राई डे जो भी आप लोग को याद रहे। तो MPLRC का जो इन्फोर्समेंट डेट है, कहीं बेयर एक्ट में ऊपर नीचे कहीं अपना लिख लीजिएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट इन्फोर्समेंट 2 अक्टूबर 1959। ये सब हम लोग को याद रहना चाहिए, 2 अक्टूबर 1959। अब देखिए ये जो MP लैंड रेवेन्यू कोड है, ये 264 तो सेक्शंस है ना, देखिए सब कोई देख लीजिए, आप सब बताएं। और डिवाइडेड इनटू 13 कितने चैप्टर हैं, देखिए
19 चैप्टर
है। तो चैप्टर हो गए 19, सेक्शन हो गए 264, और मेरे ख्याल 3 शेड्यूल्स हैं इसके साथ। देयर आर 3 शेड्यूल, 3 शेड्यूल हैं,
सब नोट करते चलिए
बस। हाँ, ये सब इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, कोई प्रिंसिपल्स इसमें नहीं है कि हम कोई अलग से आपको बता रहे हैं, बस आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 इज एन इन्फोर्समेंट डेट, इसमें 19 चैप्टर्स हैं और फिर 264 सेक्शंस हैं और देर आर 3 शेड्यूल। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की, जो एकदम बेसिक थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई कि वो इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है, 2 अक्टूबर 1959। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा UPLRC के बारे में याद हो, UP लैंड रेवेन्यू कोड जो नया हम लोगों ने पढ़ा, UPLRC 2006, तो याद होगा आपको कि UPLRC में पहले रेवेन्यू के टॉपिक रखे गए थे, हु इज रेवेन्यू ऑफिसर, बाउंड्री मार्क डिस्प्यूट, याद है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खसरा खतौनी, चेंजेस, म्यूटेशन, उसके बाद कुछ लैंड्स के बारे में जाना था, वेकेंट लैंड कौन सी होती, कौन सी लैंड खाली होती, गांव सभा में वेस्टिंग लैंड कौन सी, पावर ऑफ गांव सभा। फिर हम लोग आ गए थे टाइप्स ऑफ टेन्योर, फिर उनके ढेर सारे राइट हम लोगों ने पढ़े थे, लंबा चौड़ा राइट पढ़ने के बाद, फिर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट था लैंड रेवेन्यू, याद है 157 में रिकवरी ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के बाद 200 के बाद याद होगा फिर से रेवेन्यू का सिस्टम आया था, और वहां बताया गया था रेफरेंस रिव्यू रिवीजन अपील, याद आ गया 206 ऑनवर्ड्स था। यानी वहां पर करीब 60 या 70 करीब सेक्शंस थे जो रेवेन्यू से रिलेटेड थे, फिर बाकी सेक्शन जो हैं वो बीच में सारे सेक्शंस आ गए राइट्स ऑफ भूमिधर के, जितने टाइप्स ऑफ भूमिधर होंगे, और फिर लास्ट में फिर से आ गया अपील रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन। आपकी इस जो MP लैंड लॉ में भी लगभग वही चीज़ की गई है, बस यहाँ जो अपील रेफरेंस रिव्यू रिवीजन था उसको भी एक साइड में आगे कर दिया गया। तो इसमें जब एक बार आप सब देखिए चैप्टर्स, तो देखिएगा कि इसमें भी चैप्टर में जो शुरुआत के करीब करीब 150 to 155, देखिए कहाँ से है, 156 पे है ना, भूस्वामी कहाँ है, देखिए 156
पे,
देखिए जो भी हो सेक्शन, देखिए भूस्वामी कहाँ पे है,
157 से
क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर, देखिए 157 कौन सा चैप्टर है,
चैप्टर 12।
देखिए चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स, आपको ऐसे थोड़ा दिमाग में रखिए, चैप्टर 12 157 ऑनवर्ड्स हमें पता चलेगा कि कितने टाइप के भूमिधर होते हैं। अब जैसे वहाँ एक ही होता है उसको भूमि स्वामी कहते हैं, बाकी भूमि स्वामी होता है और दूसरा ऑक्यूपेंसी टीनेंट होता है, मोरूसी कृषक शायद अब हट गया है, फिर एक शब्द आता पटेल, कोटवार, ये सब रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो आगे आएगा। तो 157 ऑनवर्ड्स अब ये भूमि स्वामी, उनके राइट्स, जैसे राइट्स में आप सबको याद होगा, आप कहते हैं राइट टू ट्रांसफर वगैरह है, इसमें भी है, वही सब है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वही सब है, कौन किसको देगा वही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी लगभग है। तो हमारे पास 157 ऑनवर्ड्स 264 तक आपको यही सब दिखेगा, यानी भूमि स्वामी, उनके राइट्स, लैंड कैसी होती, खाली लैंड कौन सी होती है, इट्सेट्रा। तो 157 ऑनवर्ड्स अगर आधा आधा कर दें तो 264 तक हमें लैंड होल्डर्स के बारे में, उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़, ये सब पता चलेंगे। और उसके पहले जितना है वो सब रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू से रिलेटेड अगर हम बोलें तो हम बोलें कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, काइंड्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, बोर्ड की क्या ड्यूटी है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स कैसे होते हैं, इसी में सब पढ़ेंगे, शुरुआत के चैप्टर्स में होगा, ये सब शुरुआत में है। तो करीब 150 सेक्शंस जो हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के, उनकी पावर, बाउंड्री मार्क डिस्प्यूट, उनका करेक्शन, म्यूटेशन, ये सब शुरुआत में है। अब हमारा जो काम होगा धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को टिक कराना और समझाना जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिए 157 ऑनवर्ड्स तो भूमिधर, उनके राइट्स, उनके सब कुछ बताए जाएंगे। 157 के पहले सारा अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर, म्यूटेशन, दाखिल, खारिज, ये सब 157 के पहले इन्होंने कवर कर दिया है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसका क्या एम है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल से भी इसमें क्वेश्चन आया, प्रीलिमिनरी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीएम्बल ऑफ दिस एक्ट, यूपी रेवेन्यू, अरे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड है ना, COD। अच्छा कोड क्यों, अच्छा एक और अच्छी चीज बताएं आप लोग को, हम लोगों ने पढ़ा था ना यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, लोकल नाम है ना, इसमें कंसोलिडेशन इसी में है। ये जब आप 208 या 7 से देखिएगा 221 तक, वो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर दिया है, इसमें देखिएगा उसी में 205 से 220। हमने भी इधर ही आज दो चार दिन में देखा इसको, वही हल्का हल्का हमको भी, तो 205 से देखिए 221 तक आपको कंसोलिडेशन से संबंधित प्रोविजन मिलेगा। कंसोलिडेशन सबको याद होगा, हम लोगों ने चकबंदी बात की थी ना, यहाँ पे वही है। तो ध्यान रखिए इसमें कंसोलिडेशन से भी रिलेटेड प्रोविजन इनबिल्टेड है। अच्छा इसमें एक बड़ा चेंज, अगर किसी बच्चे के पास बिफोर 2020 ना, अगर बिफोर 2020 की बेयर एक्ट है तो उसमें एक बड़ा चेंज हो गया, बड़ा रिपील हुआ है। तो बिफोर 2020 यानी 2020 का अमेंडमेंट आपकी बेयर एक्ट में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा सब कोई, ऑनलाइन भी बेटा सब कोई 2020 वाली बेयर एक्ट लीजिएगा, या ना भी हो तो कम से कम अमेंडमेंट आपके पास होना चाहिए, बड़ा चेंज कर दिया है। और एमपी में अमेंडमेंट पूछने का बड़ा शौक है, क्योंकि वो हर साल एग्जाम लेते हैं तो पुरानी चीजें नहीं पूछेंगे, वो क्या करते हैं चेंजेस बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए हम लोग प्रीएम्बल पढ़ने चल रहे हैं, बेयर एक्ट शुड। हाँ बेटा
सर, इसमें दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट एसएन मिला था 15 सितंबर 1959 और एमपी गैजेट में ये हुआ पब्लिश 21
सितंबर 1959। अच्छा 21 सितंबर 9, मगर ये मुझे कैसे मालूम है ना 2 अक्टूबर,
जी सर,
तो वो इन्फोर्समेंट की डेट रट लेना, मैं एक बार और चेक कर लूँगा, क्योंकि ये तो पता नहीं बचपने से याद है कि गांधी जयंती के दिन इन्होंने स्टार्ट किया था, तो देख लेंगे हम भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास भी वही है जैसे आपके पास है, तो हम लोग चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए प्रीएम्बल पढ़ते हैं। हाँ बेटा,
ये डेट वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इस दिन इंडिया में पहली बार पंचायती राज इंपोर्ट हुआ था।
बहुत बढ़िया, ये डेट वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के नागौर में क्या किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए ये कनेक्टिविटी है, अब कभी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को फर्स्ट टाइम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो अब आ जाइए प्रीएम्बल पढ़ते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड बेटा,
द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959।
अच्छा, कम ही बच्चे हैं। हाँ, हाँ।
जिनको आवाज ना पहुंच रही हो वो प्लीज आगे आ जाए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
तो प्रीएम्बल याद रखना है, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश
एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल टेन्यूर्स एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड एंड द लाइबिलिटीज इंसिडेंटल देयर टू इन मध्य प्रदेश, बीट इनेक्टेड बाय द मध्य प्रदेश लेजिस्लेशन इन द 10th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज।
अब देखिए क्या क्या प्रीएम्बल में उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। उद्देश्य में बता रहा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, दो शब्द बोला। फिर कहा रेवेन्यू ऑफिसर किस में आपको पावर मिलेगी, पूछ सकता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ यूपीएलआर एमपीएलआरसी। अब ध्यान रखिए, कहा पावर्स ऑफ, देखिए रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद देखिए राइट्स ऑफ,
लायबिलिटीज ऑफ होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर टेन्यूर्स,
बस इतना ही याद रखिए।
अदर मैटर
पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ टेन्यूर होल्डर्स जो भी भूमि स्वामी है, और अदर मैटर। तो ये प्रीएम्बल का हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए
फिर डेफिनेशन
सीधे,
फिर आते हैं हम लोग सेक्शन टू पे।
डिफिनीशन आइए, बहुत इम्पोर्टेंट है डिफिनीशन। क्लास हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं कि जा रहे हैं?
अभी आ रहे हैं।
अच्छा, आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा। हाँ, हम लोग अब डिफिनीशन पढ़ने चल रहे हैं। डिफिनीशन है सेक्शन टू की। अच्छा, जो आ रहे हैं उनको भी बता दें, मंडे को क्लास होगी इसी कंटिन्यूएशन में। सैटरडे संडे छुट्टी है, कल हैप्पी क्रिसमस है भारत में, स्कूलों में कॉलेजेस में। हमारा बच्चा आया, उसने बताया पापा हमारे यहाँ एक जीजस का अभी पूरा प्ले हुआ था। तो हमने कहा रामनवमी के दिन प्ले नहीं हुआ था बेटा? तो कहे हुई रामनवमी, हमने कहा ठीक। हमने कहा देखो हिंदुस्तान में किसकी बर्थ का हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, जीजस तो महोत्सव स्वरूप में चल रहा है, और हमारा कृष्ण जन्माष्टमी। तो देखिए ये भारतीय, यही भारत की जो इंक्लूसिव ट्रेडिशन है, हमारी कैसी सिस्टम है, एक्सक्लूसिव नहीं कि हम अपना लेके बैठ के बस हमारा ही सब कुछ है, नहीं, हम और भी कल्चर को अपने में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूसिव सिस्टम है, यही इसकी खासियत है। तो चलिए सेक्शन टू पे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, डिफिनीशन देखेंगे। हाँ बताइए, स्टार्ट करिए।
आबादी
देखना,
आबादी
वही जो हम लोग बढ़ाते हैं, वही तो है पॉपुलेशन। पर यहाँ थोड़ा सा बताएगा ना, जो गाँव में जहाँ खेती ना होती हो, जहाँ लोग रहते हैं, बताइए।
आबादी मीन्स द एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज फॉर द रेजिडेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ फॉर और फॉर पर्पजेज एंसिलरी देयर टू एंड एनी अदर कॉग्नेट वेरिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन सच एज विलेज साइट और गांव स्थान शैल आल्सो बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली।
तो आबादी का मतलब जो गांव में जहां रेजिडेंशियल पोर्शन होता है, गांव में खेत होती है और फिर कहीं एक रहते भी तो हैं लोग, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आबादी। और
चलिए इम्पोर्टेंट,
हाँ या था प्री में ये सब बहुत आता
है, या मेंस में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है,
क्योंकि ये आबादी यहाँ नहीं, आबादी काम आएगी अभी जब लास्ट का हम पढ़ाएंगे आपको निस्तार पत्रक वाजिबुल अर्ज, वो सब पढ़ाएंगे तब ये काम आएगा आबादी क्या होता है। हाँ,
बी एग्रीकल्चर इंक्लूड्स।
हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, खेती में हम लोग पढ़े थे ना अपने यूपी में, क्या पढ़े थे, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर और कौन कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसी तरह यहाँ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है जरा देखें। हाँ,
नंबर वन द रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियडिकल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बीटल लीव्स,
पान का पत्ता ना,
वाटर नट सिंघारा एंड गार्डन प्रोड्यूस। नंबर टू हॉर्टिकल्चर। नंबर थ्री द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्चर्ड्स। एंड फोर्थ है द रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फॉर्डर ग्रेजिंग और थटचिंग ग्रास।
छप्पर छपाई कुछ ऐसे हिंदी में लिखा है, बड़ा अच्छी हिंदी होती, छप्पर छपाई
चराई
चराई
छप्पर छाने की घास।
हाँ बस इतने आप लोग से लिखवा लेके हिंदी में लिख दो बेटा, जाओ एमपी के जज बनो। चारे के चराई, छप्पर की छपाई। तो खैर याद रखना एग्रीकल्चरल की डिफिनीशन मीन्स में बहुत पूछी गई है। इसमें देखिए क्या कहा है, वाटर नट्स सिंघाड़ा, बीटल नट्स, ये भी इंक्लूडिंग है किसमें, एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड। बाकी जो पीरियडिकल क्रॉप्स गेहूं चावल होता वो तो हो ही गए होएगा। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी इंक्लूसिव हैं जो इन्होंने बताई, और बताइए।
फिर है फिफ्थ नंबर पे द यूज ऑफ लैंड फॉर पोल्ट्रीज फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री इन एन एरिया सिचुएटेड मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ अर्बन एरिया।
ये टिक कर लेना, 5 किलोमीटर हमेशा रहते रहना। इनका इनका जो रूरल एरिया कौन होता है, अर्बन एरिया से जहाँ खत्म हो रही है वहां से कितने किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर। सीएमपी के लिए फेमस है, 5 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर्स के बाद जहाँ से आबादी यानी अर्बन एरिया शहर जहाँ से खत्म हो रहा है उसे 5 किलोमीटर के बाद जो ये सब काम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर, बागान ऑर्चिड ये सब सब बता दिया। और चलिए
सी एग्रीकल्चरल ईयर।
हाँ एग्रीकल्चरल ईयर देखिए कब से स्टार्ट होता है, मतलब
फर्स्ट डे ऑफ जुलाई,
सेम है ना, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, जो भी फर्स्ट जुलाई से होगा उसी को हम लोग एग्रीकल्चर। तो डिफिनीशन सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक मिली, व्हाट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, तो उसमें वाटर नट्स था, बीटल की बात हुई थी, बीटल लीप्स वगैरह की बात हुई थी, बाकी और जो इसमें आया वो आप लोग ने देख लिया, इसको आप लोग हाईलाइट से कर लीजिएगा। नोट करना चाहेंगे तो अपना भाई अगर आपके पास समय है तो नोट्स भी बना लीजिए, नहीं तो ऐसे भी चल सकता है।
बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स ये पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड पर्सनली और हु मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली। ये ई है,
ई का ई, टू का ई है, बोनाफाइड क्यों बात है, देखिए क्यों मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि लेटिंग अलाउड किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग याद है 94 में। पहले मैंने आप सबको बताया था कॉन्सेप्ट की निज जोत खेती होगी, निज जोत का मतलब पर्सनल कल्टीवेशन। यहाँ कह रहा वही चीज तो है, यहाँ भी कह रहा बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या, जो खुद पर्सनली क्या करे उस पर खेती करे या करवाए, जो लेटिंग पे ना दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। तो अच्छा मध्य प्रदेश में शुरू से अलाउड था लेटिंग, वहां पे कोई मना ही नहीं थी, तो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब जो खुद अपनी पर्सनल कल्टीवेशन में लैंड रखे, टू ई उसको कहते हैं बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। हाँ पर्सनल कल्टीवेशन बोलते हैं।
एफ कोऑपरेटिव सोसाइटी
छोड़ दीजिए,
बस इसको प्री के लिए रख लीजिएगा।
हाँ, इतना नहीं है।
एफ वन ये नया ऐड किया गया इसलिए हो गया, डेवलपमेंट प्लान।
देखिए एफ वन ऐड है शायद 2020 के बाद से,
ये है
2018 में डेवलपमेंट प्लान। हाँ देखिए क्या है,
प्री के लिए shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973।
चलो उनका कोई एक्ट है जैसे हम लोग अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट था, वही है इनका मध्य प्रदेश का अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो भी होगा उसका हिंदी में नाम है, और उसमें जो डेवलपमेंट एरिया वही डिफिनीशन यहाँ भी कॉमन हो जाएगी। और चलिए
जी गवर्नमेंट फॉरेस्ट छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, अब सीधे आई पे आ जाइए, होल्डिंग।
होल्डिंग जो हमारे पास लैंड होती है वो होल्डिंग क्या कहते हैं, क्योंकि होल्डिंग की डिफिनीशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट में पढ़ा था ना, कौन कौन सी होल्डिंग और किस पे नहीं लागू होता सेक्शन 3 में, एकदम याद वही कंपेयर कराते चल रहे हैं, आप सबको याद होता जाएगा। हाँ बताइए।
मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू एंड हेल्ड अंडर अ टेन्योर।
अच्छा एक टीन्योर के पास जो सेपरेटली असेस्ड हो रही है पार्सल ऑफ लैंड, क्यों होल्डिंग की डिफिनीशन यहाँ देना पड़ा, क्योंकि इसी में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट भी हमने बताया नहीं, इसी एक्ट में वो भी इंक्लूसिव है, तो है तो यहाँ पे उन्हें क्या देना था, होल्डिंग की भी डिफिनीशन। तो होल्डिंग की डिफिनीशन मतलब पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाई वन टीन्योर होल्डर विच सेपरेटली असेस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू। ठीक है।
इम्प्रूवमेंट
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रूवमेंट का मतलब वही हमने एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिस्टम लगा दिया है, फेंसिंग करा दिया, यानी किसी चीज़ को हम लोगों ने क्या कर लिया, इम्प्रूवमेंट, क्यों इम्प्रूवमेंट की यहाँ बात आई, क्योंकि कंसोलिडेशन है, और जब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट होती है तो जो हमारी हमने अपनी ज़मीन में इम्प्रूवमेंट किया उसकी भी तो वैल्यूएशन उसमें क्या करते थे हम लोग, जब प्रिंसिपल्स ऑफ स्कीम बनाते थे प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम, तो उसमें हम लोगों ने वैल्यूएशन लिया था कि किसी ज़मीन की कितनी वैल्यूएशन है। फॉर दैट पर्पज इम्प्रूवमेंट यहाँ पर वही है, देखिए
means with reference to a holding any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held and which if not executed on the holding is either executed directly for its benefit or is after execution made directly beneficial to it and subject to the foregoing provisions includes number 1 the construction of tanks, wells, water channels, embankment and other works for storage, supply or distribution of water for agricultural purposes, number 2 the construction of works for drainage of land or for the protection etc., number 3 the planting of trees and reclaiming, clearing, enclosing etc., 4th the erection of building on or in the vicinity of the holding elsewhere than in abadi or urban area required for the convenient
कौन सा सबसेक्शन था ये 2 का
ये 2 का जे
हाँ जो बच्चों के पास बेयर एक्ट नहीं 2 का जे है इम्प्रूवमेंट। अच्छा अब इम्प्रूवमेंट अगर हमें याद है तो बाकी तो डिफिनीशन आप लिख लेंगे ना, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो एग्रीकल्चर को बेनिफिट करे वो आपने काम किया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या है वाटर टैंक यानी इरिगेशन सिस्टम आपने बढ़ाया, फेंसिंग हमने अपने मन से बता दिया भाई वो भी तो इम्प्रूव करेगी, गायबल नहीं आएगा तो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। बाकी इन्होंने बताया ट्रीज प्लांटेशन आपने किया उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है उससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो जो भी किसी एग्रीकल्चरल लैंड की फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्हेंस द वैल्यू इट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है और चलो 2J है,
2J हो गया। फिर M1
स्मॉल M होगा
2018 से इंसर्ट किया गया।
अच्छा क्या है
लैंड रेवेन्यू।
अच्छा
मींस ऑल मनीज पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग लैंड एंड इंक्लूड्स प्रीमियम रेंट लीज मनी क्विट रेंट और एनी अदर कॉग्नेट वेरिएशन ऑफ दीज एक्सप्रेशन।
तो लैंड रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आएंगी ये 2018 से जोड़ा गया है, इसमें मुझे लगता है इंक्लूड किया गया कुछ चीजें, रेंट वगैरह सब इसी में आ जाएगा, तो जो गवर्नमेंट को पेबल होगा। अच्छा रेंट और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है ना, लैंड रेवेन्यू हम लोग सरकार को देते हैं और रेंट किसको देते हैं अगर हमारा प्राइवेट लेसी है प्राइवेट लीज है, तो जो हम किराया वसूलेंगे हमने अपनी ज़मीन को लेट आउट किया है तो हमें जो मिलेगा वो रेंट मिलेगा, हम जो सरकार को देंगे वो रेवेन्यू। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड रेंट, बट समटाइम्स गवर्नमेंट आल्सो गेट द रेंट अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू, वो केस होता गवर्नमेंट लीज, याद है गवर्नमेंट लेसी हम लोगों ने जाना था। अगर सरकार की जमीन है और सरकार ने ही किराए पे दिया तो सरकार रेवेन्यू के साथ ही साथ क्या और वसूलेगी, रेंट भी वसूलेगी। तो यहाँ यही बता रहा है कि लैंड रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो गवर्नमेंट लेसी के लिए अगर देखा जाए गवर्नमेंट लीज सर्विस लैंड होती है, एक ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्विस लैंड होती है आफ्टर 200 हम पढ़ाएंगे जब, तो सर्विस लैंड को लेट आउट किया जाता है उसी गवर्नमेंट लीज कहते हैं, उसी को पट्टे की जमीन बोलते हैं। तो चलिए और बताइए क्विट रेंट होगा, देखो स्पेलिंग क्या है,
क्या है QUIT क्विट,
कुछ छोड़ने का होगा, जैसे आपने ले लिया आप पहले प्री मेच्योर छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ पेनाल्टी के साथ लेट आउट करना छोड़ना पड़ेगा, जैसे आपने सरेंडर किया ना तो वह पेनाल्टी के साथ जो होता है वही क्विट, क्विट माने छोड़ना, उसी का रेंट होगा। ये मैंने ऐसे ही बताया बाबू, समझ गए ना, न मुझे मालूम है न तुम्हें मालूम है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हम भी बेटा ठीक है बस सही है चलो। हाँ
ओ टू ओ मैंगो ग्रोव,
आम, मैंगो,
आम्रकुंज,
आम्रकुंज। देखिए हिंदी पूरा हिंदी में ले ले पेपर ना, तो आधा तो उसे भाग जाएंगे दिल्ली वाले। हाँ, आम्रकुंज, मैंगो ग्रोव, आप लोग क्या है ना मलिहाबाद, पूरा एरिया क्या है जहां इतना मैंगो प्लांटेशन हो कि एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, यानी इतनी डेंस होते हैं जो मैंगो वाले होते हैं कि फिर नीचे धूप तो आती नहीं है, तो फिर नीचे कोई खेती संभव नहीं। तो जहां एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, इतने पेड़ हो, उसको हम लोग कहेंगे मैंगो ग्रोव, मैंगो जो आदमी को भगा दे, दैट इज कॉल्ड मैंगो ग्रोव। बताओ,
means mango trees planted in such numbers that they preclude or when rule grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any purpose other than planting of tree।
कुल मिलाकर इतना आम के पेड़ बगीचा जिसको कहते हैं mango grove, आम का बगीचा इतना हो जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड मैंगो ग्रोव्स। ठीक है, टू ओ है। हाँ,
फिर ओ ए, टू ओ ए, मार्केट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ लैंड असेस्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इश्यूड बाय द कलेक्टर अंडर द मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के बनाया जाना तथा उनका परीक्षण नियम 2000,
ये तो अंग्रेजी में पढ़ा रहा
है, मेड अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899।
ठीक है, मार्केट वैल्यू की बात इन्होंने किया है, ओ ए सेक्शन 2। जब डीआरटी में जाइए कभी ना, तो वहां बोलते हैं ओ ए फाइल करो, ओ ए जानते ना, ओरिजिनल अप्लीकेशन, कहते हैं ओए फाइलिंग हो रही है, तो ओरिजिनल अप्लीकेशन कोई बहुत कॉमन है लॉ में, जब आप डीआरटी में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाओ तो वहाँ पहले ओए बनती है, ओए के बाद उसके रिप्लीके जो जवाब आता है वो कुछ आईए या कुछ होता है, तो वो डीआरटी में खूब ओए ओए नाम आता है। और चलिए
फिर उसके बाद फिर है वी टू सर्विस लैंड।
हाँ, ये विक्ट्री वाला वी है।
हाँ,
सेक्शन टू वी टू, क्योंकि सर्विस लैंड आगे चल के बताएंगे।
सेक्टर भी देख लीजिएगा, V1 2018 में जोड़ा गया है।
अच्छा, V2 सर्विस लैंड, हमने बताया ना सर्विस लैंड पे गवर्नमेंट लीज देती है ना, जो सरकार में वेस्ट होती है एक्स्ट्रा लैंड होती है उसी को हम लोग कौन सी लैंड बोलते हैं, सर्विस लैंड। तो अभी डिफिनीशन बता के हम वो सेक्शन भी दाएं बाएं आपको ले चलेंगे जिससे थोड़ा सा और एक्विटेंस बढ़े। हाँ,
इससे पहले यू देख लीजिए, रेवेन्यू ऑफिसर है, ये 2020 में जोड़ा गया है।
हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो आएगा ही आएगा। रेवेन्यू ऑफिसर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, टू यू ना।
हाँ, टू यू,
यू
टिक लगाते चलिएगा भाई।
हाँ, यू 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 हनी सिंह, यू यू, हाँ यो यो है ना, वो यू यू है, ये यू है। चलो, हाँ,
रेवेन्यू ऑफिसर वही सेक्शन 11 वाले जो हैं वही सब रेवेन्यू ऑफिसर हैं इसमें,
अभी हम लोग पढ़ेंगे ना। रेवेन्यू ऑफिसर उत्तर प्रदेश में पढ़े थे ना, कमिश्नर से लेकर ढेर सारा, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे कानून गो, सब पढ़े थे ना। ये इसमें भी एक लिस्ट होगी, लगभग वही है, सेक्शन 11 में है ना। ठीक, हाँ, है, और चलो अभी कर लेंगे। हाँ,
फिर V1 सेक्टर, इसको भी नोट कर लीजिए, मींस एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया फॉर्म्ड इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड।
ये बेकार है, सर्विस लैंड बताओ, वही बहुत पूछा जाएगा।
मींस सर्विस लैंड V2 means such land in a non-urban area which is given to a kotwar for a purpose of agriculture during his tenure of post।
बहुत important है ये, कहा section 2 V2 का service land कौन सी है, एक बार वो निकाल भी लीजिए बेरक में, मैं कहा 220 करीब होगा, service land कौन सी है, या 201 के around देखिए, तो कहा सर्विस लैंड वो लैंड होती है जो कोटवार को दी जाती है। अब लीजिए एक नया आदमी आ गया, अभी हम लोग सर्विस लैंड ही समझ रहे, तब तक एक और आदमी का क्या नाम आ गया, कोटवार, कोटवार। तो सर्विस लैंड इज गिवन टू कोटवार फॉर एग्रीकल्चर. कोटवार मीन्स विलेज चौकीदार, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट में लिखा है विलेज चौकीदार अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. यहाँ पर विलेज कोटवार अपॉइंटेड बाय आई थिंक कलेक्टर
कोटवार.
बस बेटा अभी हम भी ढूंढ रहे हैं, 200 के आगे चलो, 183. देखो बच्चे बता रहे हैं 183
है,
होगा तो 200 के
आगे. सर्विस लैंड नहीं है.
अच्छा सर्विस लैंड है, देखिए. हाँ देखिए 183 सब कोई देखिए, मिलाते चलिए, जहां जहां लिंक हो जाए याद रखते. 183 बेटा सब कोई देखिए. हाँ
सेक्शन 183 सर्विस लैंड.
अरे एक आध लाइन बस बताइए.
सब सेक्शन 1, एनी पर्सन होल्डिंग लैंड ऑन द कंडीशन ऑफ रेंडरिंग सर्विस एज अ कोटवार शैल सीज टू बी एंटाइटल्ड.
बस शैल सीज टू बी एंटाइटल्ड है ना बेटा. ये सर्विस लैंड वो लैंड होती है, फिर से बस इतना ही डिफिनेशन तो याद रखना टू यू. सर्विस लैंड वो लैंड होती है जो किसको दी जाती है फॉर सर्विसेज, कोटवार को. और कोटवार का काम क्या होता है आगे देखिए, 200 ऑनवर्ड्स होगा. कोटवार का काम विलेज चौकीदार होता है. थोड़ा थोड़ा पटेल के आगे देखिए कोटवार होगा, 225 के करीब होगा कोटवार. देखिए ड्यूटीज ऑफ कोटवार अपॉइंटमेंट 230 देखिए. हाँ 230 देखिए, बच्चे सब ढूंढ डाले. थोड़ा थोड़ा शब्दों को समझते चलिए, जिसे आगे जब पढ़ाए ना तो एकदम एक बार और रिवीजन हो.
तो इसमें इतना जो डिलीट और रिफील हुआ उसको भी डाल दिया है.
तभी तो होगा न्याय, ऐसे न्याय नहीं हो पाएगा. मैराथन दौड़ के स्कूटी थोड़ी ले आओगे.
अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार्स एंड देयर ड्यूटीज.
हाँ एक लाइन में बस बता दीजिए कोटवार समझ में आ
जाए. फॉर ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज देयर शैल बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर सेक्शन 258 वन और मोर कोटवार्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब.
अब ड्यूटी देख लीजिए क्या काम होगा कोटवार का.
Every person who at the coming into force of this court holds the post of a village watchman in the Bhopal and Siron region or of a chowkidar in the Vindh Pradesh region shall be deemed to be kotwar under this section.
समझ गए ना? तो दिमाग में रखिए कहीं जो बना रहे बनाते चलिए. कोटवार का मतलब क्या है? तो सर विलेज चौकीदार, विलेज वॉचमैन. अब विलेज वॉचमैन या चौकीदार है तो फ्री में कैसे काम करेगा भाई? तो उसको कुछ रिम्यूनरेशन देना है. और साथ ही क्या देते हैं उसको? एक कोई जो गवर्नमेंट की लैंड होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस लैंड, वो उसको दे दिया जाएगा कि जब तक आप चौकीदार की तरह काम करें तब तक इस लैंड में अपना क्या करिए, आप एग्रीकल्चर करिए. जब आप छोड़ देंगे काम तो आपसे सर्विस लैंड ले ली जाएगी. तो सर्विस लैंड कनेक्टेड विद कोटवार. एंड कोटवार की क्या ड्यूटी होती है? तो कोटवार ड्यूटी इज लाइक अ विलेज चौकीदार या वॉचमैन. ठीक है टू यू पे आ जाइए.
V2 हो गया,
आ रहा है ना सबको समझ में बेटा? आ जाएगा.
सर्विस लैंड हो गया.
ये मैं अपने पूरे 14-15 साल के करियर में पहली बार इस तरह का काम कर रहा हूँ. बट ठीक है क्या करा जाए, कोरोना के बाद सब कुछ मैंने कहा कर देने वाला है. चलो हाँ ये हमसे क्या लेना देना इसका, हम तो कहाँ के हैं, हमारा फेमस है. पूरे दिल्ली में चले जाओ, उत्तर प्रदेश का पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ लो. तो मध्य प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश जाओगे? नहीं यही आओगे, दिल्ली के लिए भी यही आओगे क्योंकि अब होगा. वेरी गुड बेटा. हाँ चलो टू यू के
जेड है, वो सब खत्म हो गया.
अच्छा वो सब उड़ा दिया. हाँ जेट
टू यू तो हो गया ना,
टू यू हो गया. हाँ कोटवार हो गया,
उसके बाद आएगा ना. अब टीन्योर होल्डर है जेड, इस पे निशान लगा लीजिए. मींस अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड हु इज और इज डीम्ड टू बी भूमि स्वामी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड.
भूमि स्वामी 157 के करीब मिलेगा. कहा टीन्योर होल्डर का मतलब क्या, जो सरकार से जमीन ले दैट इज भूमि स्वामी. हम लोग अपने यहाँ टीन्योर होल्डर पढ़े थे 74 में ना, BTR, BNTR, असमी गवर्नमेंट लेसी. चलिए रिवाइज भी होता चलेगा. हाँ
फिर है Z1 टिम्बर ट्रीज.
और चलिए
टिम्बर ट्रीज मीन्स अब ये प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत, इसमें स्कूल्यता कौन सा नहीं है,
नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन बता दीजिए इन लोगों को, हाँ इसमें से कौन सा टिम्बर ट्री नहीं, याद है टीपीए में उन्होंने पढ़ा था स्टैंडिंग टिम्बर, वही है ये। हाँ
फॉलोइंग स्पेसीज नेमली टिक्टोना ग्रैंडिस, ये सब आप लोग देख लीजिएगा,
बॉटनिकल नाम है का टिक्टोना ग्रैंडिस,
फिर है पेट्रोकार्पस, और इसके आगे लिखा सागवान,
हाँ पेट्रोकार्पस माने
पेट्रोकार्पस मैरसुम्पियम बीजा, डलबेरिया लैटिफोलिया शीशम शोरिया रोबस्टा साल,
सागौन शीशम साल साखू,
हाँ सागवान बीजा शीशम साल
हिंदी पढ़ना, ये बॉटनिकल नेम है भाई,
चंदन हल्दी मुंडी अर्जुन तेंदु खमार, ये सब याद रहेगा।
ये सब क्या है, ये सब टिम्बर ट्री,
हाँ, सब टिम्बर ट्री है।
अच्छा ये सब टिम्बर है, ये फ्रूट ग्रोइंग नहीं है, हाँ, इसमें पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिम्बर ट्री, अब इसी में एक मैंगो ट्री इमली कुछ ऐसे करके दे देगा, वो भी बॉटनिकल नेम देगा, तो आपको क्या करने होगा, अगर हिंदी भी उसके साथ है तो एक बार झांक लीजिए, कोई देख
नहीं रहा, हिंदी में भी तो वही चीज लिखा है,
हिंदी में भी वही है, बॉटनिकल नेम लिख दिया, अरे बाप तब का होगा, अब तुम लोग खुद समझ लो अपना,
अब होगा अन्याय,
नहीं अब तो अन्याय हो रहा है।
जेट टू टू कल्टीवेट पर्सनली मीन्स, ये बहुत कुछ आ जाता है, मीन्स टू कल्टीवेट ऑन वंस ओन अकाउंट, नंबर वन बाई वंस ओन लेबर, और टू बाई द लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली, और थ्री बाई सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड बट नॉट इन क्रॉप शेयर, और फोर्थ बाई हायर्ड लेबर अंडर वंस पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली,
ठीक है और चलिए।
जेट थ्री अनऑक्युपाइड लैंड,
अनऑक्युपाइड लैंड, एक होता ऑक्युपाइड लैंड और दूसरा अनऑक्युपाइड लैंड, जो खाली परती जमीन जिसको कहते हैं, इसका भी अलग से चैप्टर, क्योंकि अनऑक्युपाइड लैंड पे ही वाजिबुल अर्ज वगैरह बनाते हैं, देखिए कस्टमरी राइट कैसे बनता है।
मीन्स द लैंड अदर देन द आबादी और सर्विस लैंड और द लैंड हेल्ड बाई अ भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लीसी,
यानी अनऑक्युपाइड लैंड का मतलब क्या कहा जाए, तो कहा गांव में वो जमीन जो आबादी नहीं है, जो भूमि स्वामी की नहीं है, और जो सर्विस लैंड, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ना कुछ ऐसी लैंड, या बैरन लैंड तो ना बोले, मगर रेजिड्यू लैंड कह सकते हैं ना, रेजिड्यू लैंड जो गांव में, भाई एक गांव में आबादी साइड जिसमें लोग रहते हैं, दूसरा जो हम लैंड होल्डर्स हैं जिनकी जमीन है खेती वाली भूस्वामी लैंड, और फिर एक तीसरी जो कोटवार को दी जाती है वो है सर्विस लैंड, इसके अलावा जो जमीन बची वो वेस्ट होती है गवर्नमेंट में ना, हम लोग जानते हैं उसी को हम लोग कौन सी लैंड कहते हैं, अनऑक्युपाइड, जो किसी के ऑक्युपेशन में ना हो, तो जो जिस किसी में नहीं होगी किसमें वेस्ट करेगी, इस चीएट टाइप की हो जाएगी ना, सरकार में हो जाएगी, तो ये अनऑक्युपाइड लैंड का भी पूरा एक चैप्टर है, वो आगे चल के आपको मिलेगा। तो अनऑक्युपाइड लैंड का डिफिनेशन निगेटिव वर्ड है, रेजिड्यूरी लैंड, रेजिड्यू लैंड, रेजिड्यू लैंड का मतलब जो बची हुई लैंड, जो ना एग्रीकल्चरल लैंड हो भूस्वामी के अंडर में, सर्विस लैंड ना हो, आबादी साइट ना हो, वही कौन सी लैंड कहलाएगी, अन ऑक्युपाइड लैंड, ठीक, गवर्नमेंट लेसी के पास भी हो ना हो वो ही ना, हाँ असल में मध्य प्रदेश में क्यों ऐसा लिखा गया, चार है ना, चार के अलावा मध्य प्रदेश में क्यों, मध्य प्रदेश का देखिए ना वो जो एरिया बहुत बड़ा है और अजीब सा टेरेन है वहाँ, है ना, विंध्याचल का रीजन देखिए, बहुत बड़ा एरिया है, कभी आप चाहे ट्रेन से या फ्लाइट से जाएं साउथ इंडिया या महाराष्ट्र, तो पहले किसको हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा रीजन होता है क्रॉस करने में, और वो अजीब सा टेरेन है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे ना एक अभी एलुवियल वेलुवियल भी आएगा, क्योंकि वहाँ कटान बहुत होती है, इसीलिए इस बेरेक में एक बहुत खासियत मिलेगी, आपने यूपी एलआरसी में कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कौन सा पेड़ आप काट सकते हैं और कौन सा पेड़ नहीं काट सकते हैं, इसमें मिलेगा, फॉलोइंग आर ट्रीज विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू कट, क्यों, क्योंकि इससे कटान यानी वो जो क्या बोलते हैं हम लोग एलुवियल एक्शंस होते हैं ना फेलुवियल, उसके चक्कर में कुछ पेड़ वहाँ नहीं काट सकते। और अच्छा ये भी क्यों दिमाग में रखिए, जीएस का क्वेश्चन, क्यों ऐसा कटान उटान की बात की आपने एलुवियल एक्शंस की, क्यों, क्योंकि वहां पे जो रिवर होती है उसमें सब राफ्टा बनता है, इस्ट्यूचरी बोलते हैं ना, यानी नर्मदा बहुत स्पीड होती है और वो कोई डेल्टा नहीं बनाती, जो हमारी गंगेटिक रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, बहुत स्लो स्टीप में ऐसे जाती हैं, दूर दूर हट जाएंगी, बीच में बहुत अच्छी लैंड मिलती है। मगर आप मध्य प्रदेश में जाएं तो ये जो लैंड होती हैं ये इतनी तेज फ्लोइंग होती है क्योंकि इनका वो बहुत है, जो हाइट स्लैंटिंग बहुत है। तो आप अक्सर सुनते हो ना नर्मदा में बह गए लोग, क्यों? क्योंकि बहुत करंट है उसमें, करंट मतलब बहुत तेज चलती है। हाँ बेटा,
वहाँ एक कैंपेन भी चल रहा है सर।
अच्छा, इससे रिलेटेड
हमारा विंध है, हमें लौटा दो, शायद वहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ कटने का ही कुछ पता नहीं कुछ वहाँ पे हुआ था, तो बहुत सा मतलब पूरे विंध्याचल में जब आप जाएंगे तो सबके घरों पे और बड़े बड़े बैनर हमारा विंध है हमें लौटा दो।
देखिए अच्छी चीज, हमारा विंध्य हमें लौटा दो, उसे पेड़ और काटने से रोकने के लिए, क्योंकि तो विंध्याचल रीजन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है और बहुत ग्रीनरी का रीजन था। इंडिया का जो हार्ट है मध्य प्रदेश, वो पूरा ग्रीन था। अभी हम सुन रहे थे आज स्कीम बनने जा रही है, हम लोग तो खूब स्कीम सुन रहे हैं, रोडी रोड बन रही, तो एक राम पथ बनने वाला है, जो अयोध्या से प्रभु चले थे और कहाँ तक, सेतु तक गए थे ना, रामेश्वरम तक, तो वो पूरा पथ बनाने। अब इसका मतलब आप पथ बना रहे हो तो क्या करोगे, बीच में फिर क्या काट डालोगे, पेड़। अब ये एक बात अलग, श्रद्धालुगण अभी 14 कोसी परिक्रमा कर रहे थे, फिर 4000 कोसी करेंगे, बहुत अच्छा होगा, उसमें बीच बीच में कैंपिंग होगी, भालू होगा, जामवंत हनुमान जी टाइप के होंगे, कोई पत्नी उठा ले जाएगा आपकी अगर आपके पास है, और नहीं है तो मिल जाएगा आपकी, तो इस माहौल में तो पति उठेगा है ना, आपकी मामला थोड़ा दूसरा चल रहा। तो रामपथ बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम टूरिज्म के लिए अच्छा रहेगा ना, ठीक रहेगा। चलो तो इसी बात पे हम लोग पढ़ लिए और चलो
अब आ जाइए चैप्टर 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
अब देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम लोग जानते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस कहाँ है, ग्वालियर। कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होता है, नेट पे डालिएगा, प्रिंसिपल सीट ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ मध्य प्रदेश इज इन ग्वालियर। ध्यान रखिएगा ग्वालियर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट है। यूपी में कहाँ है, यूपी में पढ़े थे,
लखनऊ इलाहाबाद,
इलाहाबाद बेटा, प्रिंसिपल सीट इलाहाबाद है, उसकी एक बेंच कहाँ पे है, लखनऊ में, चेक कर लीजिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में है प्रिंसिपल बेंच। और ये तो बड़ा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेक करिएगा, प्रयागराज में प्रिंसिपल बेंच है और प्रिंसिपल जो भी बोलते हैं सीट, और बेंच कहाँ पर है, लखनऊ में। मगर मध्य प्रदेश में ये किया है कि अगर हाईकोर्ट जिस जगह होती है ना वहाँ पर, जैसे भोपाल उनकी कैपिटल है ना, तो हाईकोर्ट को जबलपुर रखा है। आप लोग तो जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, देखिएगा पुलिस हेडक्वार्टर कहीं और होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर में है। तो इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश, तो रीजन वाइज हेडक्वार्टर हर एक बड़े जिले में, कुछ जबलपुर में कर दिया, कुछ भोपाल में कर दिया,
बेंच ग्वालियर में है,
ग्वालियर में भी है बेंच, और एक और तो है नागपुर भी तो है,
हाँ, नागपुर है,
नागपुर है, दो बेंच है। चलिए
नोट कर लो भैया
ये सब, हाँ
इम्पोर्टेंट है।
अच्छा तुम लोग हंस ही रहे हो, अरे नहीं पढ़ा भी रहे भाई, हाँ
मेन जबलपुर में है उसकी,
वो तो जानते हो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट एक है ग्वालियर में
और एक नागपुर,
नागपुर में, हाँ चलिए।
फिर ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
छोड़ दीजिए सब छोड़िए,
प्रिंसिपल सीट,
प्रिंसिपल सीट इन लोगों को पता ही चल गया, सेक्शन उक्शन मत बताइए इतना,
सब तो टिक लगाते चलिएगा भैया आप लोग।
प्रिंसिपल सीट कहाँ है इसमें लिखा नहीं मैम, ग्वालियर में, सीधे रेवेन्यू बताइए, वो रेवेन्यू अफसर वाला वही पूछा है ना, 11 है कौन सा,
11
हाँ।
चैप्टर 3 रेवेन्यू ऑफिसर्स देयर क्लासेस एंड पावर्स,
चैप्टर 3 सेक्शन 11 रेवेन्यू ऑफिसर्स क्लासेस एंड देयर पावर्स,
रेवेन्यू ऑफिसर्स सेक्शन 11 देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स नेमली।
अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर कहाँ डिफाइंड था, सेक्शन 2 यू ना, हम लोग पढ़े थे ना कि अभी डिस्कस कर रहे थे शायद नया एड है रेवेन्यू ऑफिसर ना, इसलिए याद रखिएगा, इसी के साथ प्लस कर लीजिए 2U और यहाँ लिस्ट बता दिए। हाँ,
रेवेन्यू ऑफिसर, देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, नेमली प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर,
प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, दूसरा कमिश्नर और
एडिशनल
हो गए इनके, ठीक है,
कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स,
ठीक है,
फिर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स,
हाँ,
कलेक्टर,
ठीक,
एडिशनल कलेक्टर,
ठीक,
डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर
और
सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और नायब तहसीलदार और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स।
अब देखिए एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, मेंस में बस इतना ही करते हैं, राइट डाउन हु इज अ रेवेन्यू ऑफिसर, ये अपने आप में एक अजीब सा क्वेश्चन हो गया। हाँ,
लिखेंगे कि हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर और उसमें देंगे, हमको याद आ रहा है जो ऑप्शन देते थे रेवेन्यू इंस्पेक्टर,
हाँ वो तो यूपी से लफड़ाफा
नहीं है,
कानून गो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, देखिए इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर बहुत अच्छा है, इन्होंने देखिए क्वेश्चन बताया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर नाम की कोई चीज इसमें नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर इन MPLRC, तो देखिए इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो यानी हमें ये देखना है कि इसको 2-3-4 बार पढ़ के लिस्ट को दिमाग में रख लेना है कि इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसा उत्तर प्रदेश में होता था यहाँ पर कोई नाम उस तरह का नहीं है, बस इतना याद रख लें, यानी बस लिख लिया किनारे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर इन MPLRC, मध्य प्रदेश में रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है। बाकी तो देखिए MCQ करेंगे उसी से ज्यादा आप लोग को लाभ मिलेगा, हम लोग तो टिक लगवा रहे हैं। और चलिए
कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 12 है ये, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी सबॉर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट, सब सेक्शन 2 ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन अ डिवीजन शैल बी सबॉर्डिनेट टू द कमिश्नर, और थर्ड है अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द कलेक्टर।
देखिए जिले में किसके अंडर आते हैं, कलेक्टर के, और कमिश्नरेट में कमिश्नर के, और जनरली वो लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं, तो एक जो मंडल होता है मंडल में जितने रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो कमिश्नर के अंडर में होगा और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल थी चीज है।
फिर 13A अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड हिज पावर,
ये नया है बंदा हमको लगा,
एंड ड्यूटी
कब का,
ये हाँ ये जो है 2018 में जोड़ा गया,
ये पूछा गया है क्योंकि ये नया है, एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे था ये, सीनियर IAS होता है प्रिंसिपल
रेवेन्यू कमिश्नर,
अच्छा यही हमको लगता है सबसे टॉप पे भी है रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ। में देखिए कौन है सबसे टॉप पे, यही है ना, आई थिंक ये इसकी जो रैंक होगी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, आप सब जानते हो ना IAS में रैंक होती है ना, तो पहले तो होते हैं चीफ सेक्रेटरी, अगर स्टेट की हम बात करें, सेंट्रल में बात करेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ पे क्या होता है सबसे टॉप पे CS, और फिर बोलते हैं ACS, नाम सुनते हो ना आजकल CS से ज्यादा ACS, अवनीश अवस्थी एक नाम आता है, ये लोग क्या हैं ACS, बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जाइए ACS साहब के यहाँ फाइल गई है, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो बहुत इस समय पावरफुल जो है वो अवनीश अवस्थी का नाम आता है, जिनको हम लोग कोरोना टाइम में देखते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे ना, तो वहीं से हम लोग भी जाने, बहरहाल ACS की पोस्ट, तो CS ACS वहाँ पे, और उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीनियरिटी में IAS लेवल पे होते हैं, हाँ बेटा कोई बता रहा है, अच्छा नहीं, तो यही ये जो लोग हैं ना प्रिंसिपल, जहां वर्ड आ गया मतलब सीनियर मोस्ट IAS, बहुत सीनियर रैंक के हो जाते हैं वही लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, और उनकी एक्सपीरियंस तो कमाल की होती, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप बात करके कभी देख लीजिएगा पता लग जाएगा कि आप और उनमें अंतर क्या है,
समझ में आता
आ जाता है, बात करके ही समझ में आता कि मैं क्यों नहीं IAS बना, जज से बात करके कुछ नहीं पता चलेगा,
आई लगा हो उससे बात करो नेक्स्ट लेवल।
हम तो जज न जाने कितना मिले अच्छा लगा, मगर किसी सीनियर आईएएस से मिल लो वो कोई उलझ पुलझ बात ही नहीं करता।
भी आईएएस हो,
अच्छा आईएएस होगा ना, वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करेगा, ये भी नहीं कहेगा मैं बड़ा बिजी हूँ। और तुम जो खाली टाइप के लोग होते हैं वो अपने आप को आएंगे, हम चले तो सिपाही उधर सलाम किया, मतलब समझ लेना ये भूखा है, इसकी इज्जत उज्जत नहीं मिलती। और जो एक्चुअली इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार मतलब आईपीएस है, अब वो आएगा ना मिलने, तो आईपीएस आएगा ना तो अपना प्राइवेट कार से आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी। और जज साहब आएंगे तो वो चार उनकी ओर जज 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 को एक आदमी आए जज साहब आए हैं आए हैं आए हैं तो आए तो आए हैं, मत आईपीएस और आईएएस बहुत पूछो तो बताएंगे मैं डीआईजी हूं वहां पे फलाना झांसी रेंज का, धीरे से बोलेंगे बस। इसका मतलब अगले के पास सब कुछ है, वो छुपाना चाह रहा कि वो बहुत पब्लिकली अपने आप को डिस्प्ले करने की जरूरत है, और जिसके पास नहीं है वो एकदम डिस्प्ले मोड पे रहता है कि बस चमका दो हमको कहीं से। तो ये लोग आईएएस हैं बेटा, बहुत सीनियर होते हैं। तो एक इसी हंसी मजाक में एक समझ में आया कि 13A ना 2018 से एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, जो सबसे टॉप का रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया गया, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। हाँ बता दीजिए।
द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर हु शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
तो इसमें कोई खास नहीं था, बस हमको ये याद रखना कि 2018 से एक नई पोस्ट टॉप ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट क्रिएट की गई है, और ये रेवेन्यू में टॉप ब्यूरोक्रेट होंगे, जो जिसको हम लोग कहेंगे 13A वाले प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। बस इतना याद रखें तो हमारा काम बन जाएगा। और
फिर अब
छोड़ते चलिए बाकी सब छोटा मोटा क्या ठीक करा।
फिर 19 है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार एंड नायाब तहसीलदार।
ये तो सरकारी करते ही होंगे
आप, कौन स्टेट गवर्नमेंट।
हाँ छोड़ दीजिए, तो कॉमन सी चीज है। और
24 है कन्फरल, 24 सेक्शन 24 कन्फरल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी।
हाँ जब वो नहीं है इतने बड़ी लिस्ट में, अब जब इतना नहीं होगा तो और कौन होगा। बहरहाल इतनी बड़ी लिस्ट में नहीं है तो फिर सरकार किसी भी पब्लिक ऑफिसर को क्या कर सकती है, पावर कन्फर कर सकती, भैया काम उन करो और चलो। इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, कौन कन्फर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बस।
फिर सेक्शन 29 पे आ जाइए, पावर टू ट्रांसफर केसेस।
हाँ ये अच्छा है कि जो केसेस ट्रांसफर होते रेवेन्यू के वो कौन करता है, तो देख लीजिए
सब सेक्शन 1 व्हेनेवर सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 व्हेनेवर इट अपीयर्स दैट एन ऑर्डर इज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस द बोर्ड मे डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एन इक्वल रैंक। सब सेक्शन 2 द कमिश्नर मे इफ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एन इक्वल रैंक इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन द सेम डिवीजन।
तो दो के पास पावर आई ना, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होगा, अच्छा वो जरूर देख लीजिएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कितने लोग होते हैं, दो या दो से अधिक ना, वो कहीं लिखा होगा हम लोग छोड़ दिए, आप लोग देख लीजिएगा। बोर्ड जब भी हम बात करेंगे तो अकेला तो होगा नहीं ना बोर्ड में, बोर्ड में कम से कम कितने लोग होंगे।
देयर शैल बी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 3 देख लीजिए एक बार,
उसी में
देयर शैल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ मध्य प्रदेश कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू और मोर अदर मेंबर्स। इस पे लाइन खींच
ये अंडरलाइन पे भूल गए थे हम, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है बोर्ड, जब याद आया तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
टू और मोर अदर मेंबर्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम थिंक फिट टू अपॉइंट। यही लाइन पूछेगा।
प्रिंसिपल जज होते हैं, जुडिशियल बैकग्राउंड भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड भी हो सकता है, इनका नीचे क्वालिफिकेशन भी है, पढ़ा जाए कैसे बनते हैं मेंबर ऑफ बोर्ड, ऑफ रेवेन्यू, तो एक तो प्रिंसिपल जज हो गया और दो या दो से
अधिक जैसा कि
स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, प्रिंसिपल जज हो गया दो या दो से ज्यादा मेंबर, ठीक है।
फिर आइए सेक्शन 30 पे निशान लगाइए, पावर टू ट्रांसफर केसेस टू एंड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर की ये पावर है। मे मेक ओवर एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अराइजिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी अदर इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर डिसीजन फ्रॉम हिज ओन फाइल टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम competent to decide such case or class of cases or may withdraw any case or class of cases from any such revenue officer and may deal with such case or class of cases himself।
कुल मिलाकर देखिए ना, अपने के नीचे के अधिकारी का ही तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करती है, सिविल और क्रिमिनल, याद होगा ना। हाँ, और हाई कोर्ट कहाँ ट्रांसफर करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है भाई, एक एडीजे से दूसरा एडीजे, एक मजिस्ट्रेट से, सेम तो कह रहा कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में ट्रांसफर कर दे, कमिश्नर किस में करेगा, वो कलेक्ट्रेट से ट्रांसफर करता है, कलेक्टर किस से करेगा, वो अपने नीचे वालों का, एसडीओ तहसीलदार वालों का करेगा, यानी अपने नीचे के जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर उनके पास से केस उसी रैंक के किसी और सबॉर्डिनेट ऑफिसर पे ट्रांसफर करने की पावर रखते हैं ये लोग, तो सबके पास है अपने नीचे के सबॉर्डिनेट ऑफिसर के ट्रांसफर। तो बहुत अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, 29-30 दिमाग में ऐसे रखिए, हम अपने नीचे के जो ऑफिसर हैं ये उसी पैरिटी पे है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट केसेस का ट्रांसफर करती है, हाई कोर्ट करती है। अच्छा, क्रिमिनल केसेस करती है सुप्रीम कोर्ट?
Yes,
करती है ना, 406 406 है ना, 406 होगा ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इधर जब सीपीसी पढ़ेंगे तो 24-25 है पावर टू ट्रांसफर, सिविल केसेस में बहुत बार पूछा गया है, 25 में है सुप्रीम कोर्ट ना, बहुत बार पूछा गया, 76 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू ट्रांसफर द सिविल केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब पूरा पावरफुल। तो अगर आपको याद हो, ना भी याद हो तो घर जाके ट्रांसफर वाला बनाइए और 24-25 सीपीसी पढ़ डालिए और 406-407 पढ़ डालिए सीआरपीसी में, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर के केसेस की पावर कहाँ है। चलिए
अब आ जाइए 32, इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, सेक्शन 32
फ्री में पूछा जाता है, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन रेवेन्यू कोर्ट की, हाँ 32 में इनहेरेंट बता दीजिए तो बता दें।
नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट।
ये अजीब सी लाइन है, हर जगह यही मिलेगी, चाहे 151 सीपीसी में हो और चाहे 482 सीआरपीसी में, इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर क्या है, मन यहां कह रहा 32 है ना ये, हाँ 32 में याद रखिए क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रोसेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ एंड ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस रोकना है या एंड ऑफ जस्टिस में, तो कुछ भी कर सकता है, जो इसमें नहीं लिखा वो भी कर सकता है, इट कैन डू एनी थिंग इन द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में कुछ भी किया जा सकता है, यही इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग कई बार पढ़े ना, वट इज द क्वालिटीज गिवन बाई यू बाई द नेचर इज कॉल्ड इनहेरेंट पावर, वट इज इनहेरेंट इन यू। जैसे मेरे ऐसे आदमी में इनहेरेंट क्या, मैं सीरियस नहीं रहता हूँ, ठीक, हंसी मजाक करना, कई लोग होते हैं वो दिन भर गुस्से में रहते हैं, ये उनकी इनहेरेंट क्वालिटी है, क्यों तुम इतना हंस रहे हो, क्या मेरे कोई कमी है, अपने का नहीं, कमी आप में नहीं है, हमारे दिमाग में है, तो यानी तुम दिमाग पे कुछ आ गए हो। अब यानी अगले के पास स्केप्टिकल अप्रोच लेके आया है, सुकरात वाला, सपर्टीज वाला, मैं क्यों हूं, अब वो सपर्टीज के मैं क्यों हूं, मैं हूं भी कि नहीं हूं, अब ये फिलोसफिकल अप्रोच चालू हुआ ज्यूरिसप्रूडेंस का, क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन अपने ऊपर डालना शुरू करो। तो यहां कह रहा इनहेरेंट पावर का मतलब वो जो बाय नेचर क्वालिटी हमको मिलती है। दिमाग में एकदम भर के रखिएगा, इंटरव्यू में पूछते हैं इनहेरेंट बताओ तो आपका आंसर एंड ऑफ जस्टिस। अरे महाराज वो कहेगा इनहेरेंट क्या है, तो इनहेरेंट का मतलब जो नेचर ने किसी को बाय डिफॉल्ट आपको मिला हुआ है। कई लोग होते हैं, सुन लो बेटा क्या हाल है, वाटर ऑफ इंडिया धकाधक और तुरंत बाहर निकले और वहीं आपके गजब की क्वालिटी यार, इमोशनल कंट्रोल गदर एकदम। क्यों? क्योंकि वो अपना, तो ये उनकी क्वालिटी है। वुड की क्वालिटी क्या है, लकड़ी की क्या होती है, कभी प्लक में डालो, बैड कंडक्टर ऑफ, और कहीं वो एक आयरन रॉड डाल के देखना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बेटा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड द इनहेरेंट क्वालिटी। तो कोड की इनहेरेंट क्वालिटी क्या होगी, टू डू जस्टिस। काहे के लिए बैठे हैं, न्याय करने के लिए। क्या हम बहुत बड़ा काम करते हैं, अमित सर कहें हम बहुत बड़ा काम करते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ये तो आपका इनहेरेंट है, इट इज योर ड्यूटी विच हैज गिवन टू यू बाई गॉड। तो जजेस का काम क्या है बेटा, जस्टिस करना, न्याय करना। तो दिस इज एन इनहेरेंट, और इसीलिए उनको अलग से कुछ पावर दी जाती कि हो सकता है कि लिखित पढ़ित में, इन रिटेन कोडिफिकेशन में कुछ चीजें ना हो, जरूरत लगे तो वो भी कर लीजिए। ठीक है सर,
क्लास कर रहे हैं, क्या हुआ?
मम्मी भी तो नहीं सुनती, तुम लिखो फैन हो जाएंगे। हाँ ठीक, तो इनहेरेंट का मतलब कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनहेरेंट पावर, तो कहिए सर कि हर चीज एक क्वालिटी जो नेचर देती है उसी को हम लोग इनहेरेंट कहते हैं। और कोर्ट की क्या है, जो नेचुरल ड्यूटी क्या है उनकी, टू डू जस्टिस। और उसी के लिए 151 चाहे सीपीसी में हो, सारी सिविल कोर्ट को 482 में ये पावर कन्वर्ट की गई है, हाई कोर्ट को की गई। और अगर हम लोग 32 ऑफ द MPLRC की बात करें तो ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर को है, फॉर द पर्पज ऑफ एंड ऑफ जस्टिस टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, दे कैन डू, दे कैन गिव एनी ऑर्डर, मत इसका मतलब इलीगल ऑर्डर नहीं, लीगल होना चाहिए। ठीक है, और आइए
सर इसी हाँ। लिस्ट में आर्टिकल 142 भी तो जोड़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
एकदम सही है, 142 भी जोड़ दीजिए, रेजिडरी पावर है, कहते हैं ना रेजिडरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग अंडर आर्टिकल 142। इसीलिए 142 का जनरली हम लोग रेशियो वो नहीं बनता है ना, रेशियो डिसेंडाई, क्योंकि 142 में वो लॉ से हटके भी क्या कर देती है, वो इक्विटी के ग्राउंड पे भी तो जजमेंट देती है रेजिडरी पावर में। ठीक है, हाँ बेटा एकदम लिख सकते हैं आप लोग, एक जैसे ना बच्चे बता रहे हैं एक लिस्ट अलग से बनाया आपने, लिखा इनहेरेंट पावर, तो 32 तो अपनी रेवेन्यू कोड हो गई MPLRC की, और साथ ही साथ 151 CPC भी बन गया, और 482 CRPC हो गया, और 142 सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और बताइए
सेक्शन 34 कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस।
अच्छा विटनेस को कैसे बुलाते हो, कंपेल अटेंडेंस CPC पढ़ो ना, अरेस्ट कर लो, नहीं अगर पेनाल्टी करो, उसके घर का अटैचमेंट करो, यानी विटनेस किसी मामले में विटनेस को बुलाना है रेवेन्यू कोर्ट को, नहीं आ रहा है तो देखिए कंपेल कैसे कैसे कर रहे हैं। हाँ,
इफ एनी पर्सन ऑन हुम अ समन्स टू अटेंड एज विटनेस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट हैज बीन सर्व्ड फेल्स टू कंप्लाई विद द समन्स, द ऑफिसर बाय हुम समन्स हैज बीन इश्यूड अंडर सेक्शन 33 में A. Issue a bailable warrant of arrest. B. Order him to furnish security for appearance. Or C. Impose upon him a fine not exceeding rupees 1000 rupees.
अब समझिए ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
वन फाइन
पूछा जाता है, कंपेल ऑफ अपियरेंस यानी किसी कंपेल करने के लिए, जब आप सीपीसी पढ़ेंगे तो 32 पता चलेगा, यही शब्द है एकदम। तो यहां पर 32 में तो आप पढ़िएगा 5000 रुपया, यहाँ पर कितना है 1000 है और वेलेबल वारंट VW NBW नहीं इशू हो रहा, कैसा आ रहा वारंट विच इज वेलेबल वन, और जो अगर नहीं अपियर हो रहा है तो फाइन लगेगा आपके ऊपर, और वो कितना रुपया है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या बन गया फाइन। और चलिए
अब आ जाइए सीधे चैप्टर 5 पे अपील।
हाँ बेटा,
हाँ राजदीप बताइए।
म्यूट कर।
चैप्टर 5 अपील रिवीजन एंड रिव्यू।
अपील रिवीजन एंड करेक्शन प्रोसीडिंग आ गई। जो यूपी एलआरसी में 206 से था, 206 से 211 तक जो चीजें थी आपको यूपी एलआरसी में, वो यहाँ कहाँ पे आ गई हैं? मैंने कहा था शुरुआत में ही इन्होंने कवर किया है, एक अच्छी रेवेन्यू कोड इन्होंने बनाई। हाँ
सब सेक्शन 44 से कहता अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज सब सेक्शन 1 से वेयर इट हैज बीन अदरवाइज प्रोवाइडेड एन अपील शैल लाइव फ्रॉम एवरी ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू पास सच ऑर्डर अंडर दिस कोड और द रूल मेड देयर अंडर। ए इफ सच ऑर्डर इज पास बाई एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल ऑफिसर टू द सब डिविजनल ऑफिसर।
ठीक है।
बी इफ सच ऑर्डर इज पास बाई एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द डेप्टी सर्वे ऑफिसर टू द डेप्टी सर्वे ऑफिसर। सी इफ सच ऑर्डर इज पास बाई द सब डिविजनल ऑफिसर टू द कलेक्टर। डी इफ सच ऑर्डर इज पास बाई द डेप्टी सर्वे ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। इफ सच ऑर्डर इज पास बाई एनी असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर और डेप्टी कलेक्टर टू हूम द पावर हैव बीन कन्फर्ड अंडर सेक्शन 24 टू द कलेक्टर। और एफ इफ सच ऑर्डर इज पास बाई एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ हूम अ डायरेक्शन हैज बीन इश्यूड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 टू सच रेवेन्यू ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। और जी है इफ सच ऑर्डर इज पास बाई अ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू द कमिश्नर। और एच है इफ सच ऑर्डर इज पास बाई द कमिश्नर टू द बोर्ड।
तो वही हायरार्की चल रही है, हायरार्की तो है पूरा, नीचे से ऊपर के ऑफिसर के यहाँ क्या होगी अपील होगी, तो ये हायरार्की है। तो बस हायरार्की आपको रेवेन्यू ऑफिसर वाली जो नहीं 11 वाली हायरार्की याद हो जाए, तो उस अपने से ऊपर वाले के यहाँ क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट अपील, हाँ सेकंड अपील।
सब सेक्शन 2 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट एवरी ऑर्डर पास्ड इन फर्स्ट अपील अंडर दिस कोड और द रूल्स मेड देयर अंडर। ए बाय द सब डिविजनल ऑफिसर और द डेप्टी सर्वे ऑफिसर और द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू द कमिश्नर।
कमिश्नर होता है बोर्ड होगा। हाँ।
बी बाय द कमिश्नर टू द
बोर्ड।
बोर्ड
यानी सेकेंड अपील केवल कहाँ जाएगी, या तो कमिश्नर के यहाँ जाएगी या बोर्ड। तो अगर फर्स्ट अपील कमिश्नर ने सुना है तो सेकेंड अपील कहाँ जाएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ बैठ रही है, ग्वालियर। कितने हैं, एक प्रिंसिपल जज एंड टू आर मोर अदर मेंबर्स। ठीक है। और उसके नीचे कोई भी हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, उन सब की अगर उन्होंने फर्स्ट अपील सुनी है तो सेकंड अपील जाएगी कमिश्नर के पास। ठीक है। और चलिए
सेकंड अपील शैल लाई ओनली ग्राउंड्स उसके दिए हुए हैं, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। इफ द ओरिजिनल ऑर्डर हैज इन द फर्स्ट अपील बीन वेरीड और रिवर्स अदरवाइज देन इन मैटर ऑफ कॉस्ट और बी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स एंड नो अदर नेमली वन that the order is contrary to law or usage having the force of law or 2 that the order has failed to determine some material issue of law or usage having force of law or 3 that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this code which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits. 4th है इसका सबसेक्शन 4 कहता है एन ऑर्डर पास इन रिव्यू वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर शैल बी अपीलेबल इन लाइक मैनर एज द ओरिजिनल ऑर्डर।
तो बस आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखिए, सेकंड अपील के ग्राउंड हम मेंस में पढ़ेंगे, कब आपको पढ़ के जाना है मेंस में। ठीक है।
अच्छा एमपी में एक चीज और है, प्री और मेंस में बड़ा अंतर नहीं रहता है,
वही चीज है,
प्री वाले ही क्वेश्चन मेंस में भी आ जाते हैं।
एमपी में कोई अंतर नहीं होता, प्री का ही क्वेश्चन मेंस में आएगा।
46 नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स,
ये होता है,
नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 44A, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर वन अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंडनेशन ऑफ डिले ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, नंबर 2 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और नंबर 3 अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे और 4 ऑफ एन इंटरिम नेचर और 5th पास्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29, 30, 104, 106, 114, A, 127, 146, 146, 147, 150, 152,
समझ गए लोग, छोड़ दो,
61, 07, 08, 10, 12, 13, 22 जोड़ते जाइएगा 215, 20, 43 एंड बी, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन फर्स्ट अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 131, सेक्शन 134, सेक्शन 173।
130 मालूम ही नहीं होगा आप लोग क्या मतलब है। बहरहाल ध्यान रखिए, कुछ मामलों में अपील नहीं होती है और कुछ मामलों में सेकेंड अपील नहीं होती है। जब प्री वाला निकलेगा तो एक नजर इसमें डाल लीजिएगा, इन विच मैटर, और भी वो तब डालिएगा।
ये सब सेक्शन जो है रट लीजिएगा भैया, ये सब पूछ लेता है, नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर इन विच सेक्शन 45, 46, 47, 48।
चलो तब देख लेना आप लोग, कोई एक एक क्वेश्चन थोड़ी जज बनेंगे। चलो
लिमिटेशन ऑफ अपील सेक्शन 47,
हाँ कितने दिन का लिमिटेशन है, पीरियड देखिए 30 डेज क्या दिया।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग फर्स्ट और सेकेंड अपील शैल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। 45 को टिक कर लीजिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ऑर्डर अगेंस्ट विच द अपील इज प्रेफर्ड वॉज मेड बिफोर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द मध्य प्रदेश MPLRC एक्ट 2018 वाला कह रहा है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील शैल बी एज प्रोवाइडेड इन द कोड प्रायर टू द सेड अमेंडमेंट एक्ट।
कुछ मैं 45 याद रखिए, कितना डेज ना, 30 दिन ना 60 दिन, 45 डेज आ गया, बीच का आ गया एकदम। तो 45 डेज में जो अपील की लिमिटेशन, ये अलग से कहीं नोट कर लिएगा वहीं पे टिक पे, 45 डेज होती है लिमिटेशन पीरियड। और चलिए
फिर 49 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी,
ये सब देख डालिएगा,
अपीलेट सब पढ़ लीजिएगा, बहुत कोई खास नहीं है, मगर हाँ ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए और आगे
फिर 50 है रिवीजन,
हाँ रिवीजन तो जानते होंगे ना, बेसिक रिवीजन तो 115 ही है CPC का, और उसी से रिलेटेड है सारे। देखिए हमने बार बार कहा, जहां रिवीजन का नाम है ज्यूरिसडिक्शनल एरर, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यही दो चीज होती है जिससे सुओ मोटो भी, रिवीजन सुओ मोटो भी हो सकता है और ऑन एप्लीकेशन है। बाकी अभी मैंने न पढ़ा इसमें कुछ नहीं, पर मुझसे कहा जाए तो मैं रिवीजन ऐसे ही लिख के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कहाँ से गवर्न होता है, CPC से ना। देखिए हाँ पढ़िए,
सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 ए, द बोर्ड मे एट एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई एनी पार्टी कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड और प्रोसीडिंग इन विच एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड अंडर दिस कोड बाई द कमिश्नर। बी, द कमिश्नर मे एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई एनी पार्टी कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड और प्रोसीडिंग इन विच An order have been passed under this code by the collector or the district survey officer. C, the collector or the district survey officer may at any time on his own motion, any collector or district survey officer.
देखिए उत्तर प्रदेश में आप सब में 211 पढ़िएगा, 210 यहाँ केवल बोर्ड की पावर है, किसकी पावर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पावर है रिवीजन की, यहाँ पे सबको दे दिया, जिनके जिनके पास अपील की पावर है, मुझे लगता है
कलेक्टर तक सबको दे दिया, कलेक्टर तक डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर,
हाँ तो यानी तीन तीन हो गए ना, और भी नीचे हैं देखिए, और तो नहीं नीचे को, तो यहाँ तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रिवीजन कर रहा है और कमिश्नर भी कर रहा है और कलेक्टर
और
डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, एक ही रैंक होता है, यानी याद तीन तीन लोग हैं रिवीजन के, ऐसा ना हो कि एग्जाम में हम लोग UP वाला याद रखें ओनली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ पर सबको यानी चार अथॉरिटीज हैं जो अपने नीचे के मैटर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन तभी होता है उन मैटर में, रिवीजन उन्हीं मैटर में होता है ना जिसमें अपील पॉसिबल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, रिवीजन का प्रिंसिपल ही है इन दोज मैटर इन विच अपील इज नॉट पॉसिबल रिवीजन कैन बी अप्लाई, रिवीजन अप्लाई, रिवीजन तभी होगी जहां अपील नहीं पॉसिबल है। जहां अपील पॉसिबल है वहां अपील करो, आपको सर अपील नहीं कर पाए तो ना कर पाए अब आपका रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन का सेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको याद है। हाँ,
अब इसके बाद इसका जो है ग्राउंड है, एंड इफ इट अपीयर दैट द सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर वन,
अरे वो ही फेल टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन, एक्सरसाइज विच इज नॉट वेस्टेड इन हिम, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखिए यही तीन होगा।
हाँ यही
है, ये अगर लाके बच्चों को पढ़ना पड़े तो पढ़ लेंगे, कुछ और मत समझिए, आप सोचें कि हमें बेवकूफ बता रहे, नहीं नहीं, 115 बेसिक है सीपीसी का, जिसे सीपीसी की अच्छी नॉलेज है, वो चाहे रिव्यू का ग्राउंड हो चाहे अपील का, उसके बियॉन्ड ये जो सेकेंड अपील का आप बता रहे थे, मैंने जानबूझ के इसको छोड़ दिया, क्योंकि आप सीपीसी में पढ़ी है ना, सेकेंड अपील का ग्राउंड लिखा है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ
लॉ के बगल में लिखते चलिए सीपीसी का कहाँ ग्राउंड।
हाँ हाँ, वो सब याद है, वो लोग खुद ही लिख रहे हैं, स्पून फिटिंग थोड़ी ना कराना, वो तो बच्चे जिसको जरूरत हो उतना ही लिखेगा। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है ना सेकेंड अपील का, और व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन सीपीसी, इट अपीयर्स फ्रॉम केस टू केस, द हाई कोर्ट डिसाइड वेदर इट कंटेन्स द सब्सटेंशियल और नॉट। चलिए हाँ,
तो सब सेक्शन टू है इसका, नो एप्लीकेशन फॉर रिविजन शैल बी इंटरटेन ए अगेंस्ट एन ऑर्डर अपीलेबल अंडर दिस कोड अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील पास्ड इन रिविजन ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ द कमीशन अंडर सेक्शन 210।
कुल मिलाकर जहां अपील पॉसिबल है वहां रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, इतना बस याद रखिए।
हाँ, इसका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा लीजिए, अनलेस प्रेजेंटेड विद इन 45 डेज,
यानी लिमिटेशन तो बहुत आसान हो गया ना, अपील का लिमिटेशन 45, रिवीजन का लिमिटेशन 45, बस याद हो गया, उसमें कोई ऐसा भी नहीं। अच्छा, यहाँ रिवीजन की तीन कोर्टें हैं, चार हो गई, और लगभग अपील की भी तो लगभग सब वही थी, एक आध नीचे और आ गए थे एसडीओ,
एसडीओ भी आ गया था।
हाँ,
फिर उसके बाद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास है नहीं। फिर रिव्यू ऑफ ऑर्डर सेक्शन 51 पे निशान लगा लीजिए।
हाँ, ये देखिए रिव्यू होता है कि नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, अगर अपना 211 UPLRC देखिए, तो मैंने कहा था रिव्यू कर की पावर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर में नहीं है, मैटर को रेफर किया जाता है, याद आया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जजमेंट है कलेक्टर का उत्तर प्रदेश में, और रिव्यू कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कलेक्टर को लग रहा मेरा जजमेंट एकदम गलत है, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये तो गलत हो गया, नया एविडेंस अपियर हो गया है, रिव्यू के तमाम ग्राउंड है ना 47 ऑर्डर में दिया है रिव्यू का ग्राउंड, तो यही सब ग्राउंड होता है, नया एविडेंस आ गया, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ही एकदम गलत मैंने जजमेंट दिया, तो उत्तर प्रदेश में रिव्यू नहीं कर सकते, किसको भेजना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफरेंस करो, वो रिव्यू करेगा। यहाँ जरा देखते हैं इस क्या यहाँ चमत्कार लिखा 51। हाँ,
रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स सब सेक्शन 1, सेक्शन 51 सब सेक्शन 1, द बोर्ड और एनी रेवेन्यू ऑफिसर में इधर सुओ मोटो और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड,
बोर्ड और
एनी रेवेन्यू ऑफिसर,
एनी रेवेन्यू ऑफिसर यानी सबको दे दिया ना, यानी यहाँ पर हर चीज सबके पास है। ठीक है, हाँ,
रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट और हिम और बाय एनी प्रीडिसेसर इन ऑफिस एंड पास सच ऑर्डर इन रेफरेंस देयर टू एज इट और ही मेक थिंग्स फिट।
बस ठीक है, यानी अलग से नहीं है, रिव्यू भी सब कोई कर सकते हैं, जो जनरल रूल यही होता है ना रिव्यू का, कि जिसने जजमेंट दिया वही अपने जजमेंट का क्या कर दे, रिव्यू का ना 114/47 ऑर्डर ना सीपीसी में, वही सब ग्राउंड है, वही ग्राउंड यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए मैं अलग से पढ़ा नहीं रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में एकदम अलग है, रिवीजन सब कोई करेंगे लगभग चार, और रिव्यू तो जिसका जजमेंट है, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू है वही अप्लाई होता है। और छोड़ दीजिए, और चलिए कितना बच गया,
सब
चलिए अभी तो समय इतने में तो निपटा देंगे मध्य प्रदेश को।
ठीक है, इसके बाद वाला सब छोड़ दें प्रोवाइडेड दैट।
हाँ रे, वो सब छोड़ते चलिए।
स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन।
अच्छा, इसके बाद आज के बाद बेटा कब फिर हम पढ़ाएंगे? मंडे को, 27th को, इसी समय पे ऐसे ही पढ़ाएंगे। जैसे कोई बच्चे को कहीं जाना हो आप लोग को, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप लोग किससे इसको ले सकते हैं? ऑनलाइन लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए, कोई नहीं। हम कोशिश करेंगे ना उस दिन इसको एंड करें, बाइंड अप करें। हाँ,
स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सेक्शन 52 पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि इसमें एक दो अमेंडमेंट हुए हैं।
और चलिए छोड़ दीजिए, तो लग ही रहा बेकार है।
चैप्टर 6 लैंड एंड लैंड रेवेन्यू।
हाँ,
सेक्शन 57 प्री और मेंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फर्स्ट चार्ज,
स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स।
यहाँ लिख दिया है कि सबका स्वामी कौन है। उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा था, मगर यहाँ लिख दिया है कि सारी लैंड का ओनर स्टेट होता है। आप टीनियोर हैं। हाँ,
सब सेक्शन 1, ऑल लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल सच लैंड्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर, माइंस, क्वेरीज, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व और नॉट एंड ऑल राइट्स इन द सब सॉयल ऑफ एनी लैंड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
सारी जमीनें, सारा माइंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, हिल्स, जितना है सब किसका है? सरकार है। सरकार आपको भूस्वामी बनाई है, इसीलिए तो आपसे क्या लेती है? लैंड रेवेन्यू। यू आर नॉट द ओनर, यू आर द टीन्योर होल्डर। आपका एक काइंड है, आपके कुछ राइट्स अलॉटेड है। ठीक है, चलिए
अब ये प्री के लिए रह गया, क्योंकि इसका 2, 3, 3A, 4 सब रिपील कर दिया।
रिपील हो गया, बहुत अच्छा होगा,
ओमिट हो गया, बल्कि
रिपील नहीं, नहीं, पूरा रिपील हो जाए, पढ़ाई नहीं करना पड़े। हाँ, खत्म हो जाए ना, सब अच्छा रहेगा। जब भी रिपील होता है बहुत खुश होते हैं बच्चे, सर कितने सेक्शन गए।
अरे सब लैंड जो बिल था
बहुत अच्छा हुआ, वो तो धन्य है किसानों का।
पे ही सब खुश हो गए थे कि पढ़ना नहीं पड़ेगा।
नहीं, पढ़ना तो वैसे नहीं पड़ता, जीएस के लिए पढ़ना पड़ता।
58 कैपिटल ए, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू।
हम लोग पढ़े थे ना कुछ जमीनों में एग्जेम्पशन, छोटी सी जो जमीन होती है, याद है? अपने यहाँ भी तो पढ़े थे शायद, 3 पॉइंट कितना था उस हेक्टेयर के नीचे में आप लैंड रेवेन्यू पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी देखिए होगा, देखिए एग्जेम्पशन किसका है।
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, नो लैंड रेवेन्यू शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एनी होल्डिंग अप टू 2 hectares यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर।
2 hectare के नीचे, 2 hectare तक आपको लैंड रेवेन्यू देने की जरूरत, क्योंकि आप मार्जिनल फार्मर हुए ना। मार्जिनल फार्मर को तो केंद्र सरकार सम्मान निधि देती है। 2000 कितना आप लोग बताए थे, है ना? 6000 ईयर देती है ना, मगर उसमें भी शायद है मार्जिनल, कुछ है लिमिट लगाया है नहीं? वो कितना शायद आपके पास जमीन होगी तभी आपको मिलेगा, बड़े हैं तो नहीं देते हैं किसान सम्मान निधि। हाँ, तो यहाँ भी कह रहा 2 hectare के तक के लोगों को नहीं देने की जरूरत है लैंड।
सच अदर लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई।
ठीक है,
सेक्शन 60 पे आ जाइए। ये नया क्योंकि ऐड किया गया इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2018 में असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड,
कौन असेसमेंट कर रहा है, बस इतना देख लीजिए।
तीन ही लाइन का, ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड बाय द कलेक्टर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर दिस कोड।
तो बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो गया, अनअसेस्ड लैंड, जिसका भी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट नहीं किया गया है, उस लैंड का असेसमेंट कौन करेगा? असेसमेंट का मतलब कितना, जैसे टैक्स असेसमेंट होता है वैसे ही लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होता है। ठीक है, और अच्छा।
चैप्टर 7 लैंड सर्वे, डिफिनीशन ऑफ लैंड सर्वे सेक्शन 61 प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लैंड सर्वे, अब यही सब खसरा खतौनी आगे आएगा। हाँ,
पढ़े इसको।
जिनके पास बेयर एक्ट नहीं, थोड़ा सा अनाउंस भी तो करते चलना।
सेक्शन 61
सर्वे,
चैप्टर 7 लैंड सर्वे,
चैप्टर तो नहीं याद रखना बस 61,
डेफिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू. द लैंड सर्वे मींस
ए
ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. नंबर 1 डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे नंबर्स, रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर ऑफ और फॉर्मिंग न्यू सर्वे नंबर्स इन लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज एंड एक्टिविटीज इंसिडेंटल देयर टू. फिर 2 है, नंबर 2 है डिवीजन, सेकंड है इसका डिवीजन ऑफ लैंड इनटू प्लॉट नंबर्स, रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लॉट नंबर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर ऑफ और फॉर्मिंग न्यू प्लॉट नंबर्स एंड ग्रुपिंग इन them into blocks in land used for non-agricultural purposes and activities incidental thereto. Third, a grouping of the survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas and activities incidental thereto. B. Preparation of a field book describing the area, current land use and other distributes of such survey number, attributes of such survey number, ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर एज द केस में बी. सी प्रिपरेशन और रिविजन ऑफ और करेक्शन ऑफ फील्ड मैप एज द केस में बी.
ठीक है.
डी प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट इन एनी लोकल एरिया. और ई है प्रिपरेशन ऑफ एनी अदर रिकॉर्ड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड.
इजी था क्यों? क्योंकि देखिए नीचे के 2-3 तो आप लोग जान रहे हैं, जैसे फील्ड बुक एंड फील्ड मैप हम लोग खसरा कहते थे ना, और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट खतौनी कह रहा. ये सर्वे, सर्वे में क्या क्या आएगा? सर्वे ऑफ रिकॉर्ड, बाउंड्री मार्क याद है, हर हम लोग उसमें बाउंड्री मार्क लगवाए थे, पिलर्स लगाते थे, सर्वे करते थे, खाता संख्या, ये भाई कैसे डिमार्केशन कैसे होगा शहर में? तो चलो ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि मकान नंबर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, पर गांव में कैसे? इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें तो उसको भी कहीं से क्या करेंगे, डिमार्केशन करना होता है ना. वही नंबरिंग है सर्वे नंबर का. अब इसमें इस सर्वे में तमाम चीज़ें और आ जाती हैं, तो डिमार्केशन, बड़ी डिमार्केशन, उसका छोटा डिमार्केशन, उन एरियाज़ को अलग करना जो एग्रीकल्चरल नहीं है, आबादी साइट को भी अलग कर देते हैं इसमें. उसके बाद इसमें ये बताया कि फील्ड बुक, फील्ड मैप, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते थे, खसरा, यानी उसमें नेचर ऑफ द लैंड लिखा था ना, क्रॉप पैटर्न क्या है, किसने इसमें क्या क्या पेड़ लगे हुए हैं, वो हम लोग खसरा कहते थे फील्ड बुक. और इंडिविजुअल हमारा जो रिकॉर्ड था उसको हम लोग क्या कहते थे, खतौनी, कि हमारा कैसा है, लैंड रेवेन्यू कितना पेइंग है, इसमें टाइप्स ऑफ टेन्योर होल्डर कैसे हैं, वही यहाँ पे भी दिया, सर्वे में वही सब आ जाता है. चलिए और
प्री के लिए 62 भी लगा लीजिए निशान. सेक्शन 62 अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स.
अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 62, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और तो कोई कर ही नहीं सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है. और चलिए
67 फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर्स, ब्लॉक नंबर्स, प्लॉट नंबर्स.
उसको दिया
फाइन इतना
थप्पड़ मारना. हेलो हेलो, किसको कह रहे हैं? हाँ बेटा, ऑनलाइन तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, सब कोई बैठे?
यस सर.
तो क्या करें, घर जाए, इन लोगों की कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश का तो एडिशनल है ना, उत्तर प्रदेश का होता तो भाग लेते सब, है ना. कभी देखे होंगे पूड़ी सब्जी मिल रही तो ठीक, मगर उसके साथ पता चला अलग से खीर है तो खीर के चक्कर में ज्यादा जुगाड़ा लगता. क्यों? क्योंकि वो तो हमारा राइट था, ये एडिशनल है, इसको पाने की ज्यादा होड़ है. कोई एलएलबी डिग्री के लिए थोड़ी ना होड़ लगाएगा, लैपटॉप हमारा एडिशनल है, उसके लिए कहिए रात से लोग पहुंच के कानम बैठ जाए, सुबह सुबह हो कि कैंसिल हो गया, बेटा कहाँ आयो, कहें लैपटॉप लेने. महामूरा को यार, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे तो कहाँ न्यूज़पेपर, सर सुबह आया तो हम तो रात में आके बैठ गए थे यहाँ. बात भी सही है. तो जो एडिशनल होता है ना, कभी भी देखिए प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कोई लड़ता ही नहीं बैंक में, किसके लिए लगता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यही है. तो एमपी वाला आप लोग होंगे बेटा, हमें उम्मीद है ऑनलाइन सब बच्चे जगह होंगे.
फॉर्मेशन ऑफ सर्वे सेक्शन 67
ये भी बेकार है, छोड़ो,
लेकिन है इम्पोर्टेंट।
हाँ वो सब तो
ये 2020 में ऐड किया गया, इसलिए
इम्पोर्टेंट 2020 में, ठीक है। हाँ एक आध दो और 100 तक पहुंचा दो, फिर जो बचेगा वो मंडे को,
तो बीच का पूरा जो है
रिपील्ड है,
रिपील्ड नहीं उसको
ओमिट कर दिया होगा।
फिर चैप्टर 9 सीधे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स।
अब यहाँ आ गया, इसमें वही सब आएगा, करेक्शन वगैरह आएगा, लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन का रिकॉर्ड करना। हाँ देखिए इसमें
सेक्शन 104 फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हल्क इन नॉन अर्बन एरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी एंड नगर सर्वेक्षक, सर्वेक्षकों की नियुक्ति। सब सेक्शन 1 द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स शैल फॉर ईच तहसील अरेंज द विलेजर्स विलेजेस इनटू पटवारी हल्क।
हल्क माने एरिया, वो नहीं हल्क, वो कौन सा एक आयरन मैन हल्क,
नहीं आयरन मैन हल्क नहीं,
हाँ कोई और होता था,
हाँ वो ग्रीन
मिस्टर अमेरिका क्या होता था
ना, मिस्टर
हैं, हाँ बेटा कैप्टन अमेरिका, अरे दिमाग है वहाँ, हल्क हल्क वहीं कुछ हैं, है ना कोई उसमें है, हैमर उमर लेके चलता वही है,
नहीं नहीं वो तो थार है,
वो थार है, अच्छा ठीक ठीक अच्छा ये क्या करता है, अच्छा हल्क गुस्से में रहता है, अच्छा जो गुस्से में रहे उसको हल्क कह सकते हैं, बस अभी मैं जाता हूँ ऊपर, हल्क ना, बस ठीक बेटा, अच्छा नाम पता चला अपने आप, मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी था हल्कू सुने हुए ना, बहुत बहुत अच्छी कहानी है, क्या नाम है उसका,
पूस की एक रात,
बहुत अच्छी बुक है,
पूस की एक रात, जबरा कुत्ता,
जबरा कुत्ता और हल्कू, बहुत प्यारी नॉवेल है, मतलब स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की। चलिए तो हल्क यानी हल्क माने एरिया होता है, इलाका,
सर्किल,
सर्किल भी बोलते हैं ना, एक सनी देवल के पिक्चर का डायलॉग था, एरिया इलाका तो डॉगी का होता है, मैं तो शेर हूँ, है ना, ये बहुत तगड़ा डायलॉग था, बहुत मजा आ गया था। हाँ बेटा
पिक्चर में हल्का बोला जाता है हमारे हल्के में,
अच्छा हल्का मतलब मतलब इलाका ना, एरिया वही एरिया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, चलो देखो सबको आता है, हम ही समझ रहे हैं अभी कैप्टन अमेरिका को। हाँ
चैप्टर 9 ये हो गया, सब सेक्शन 1 इसका पढ़े तो द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स
मंडे करेंगे,
अब मंडे,
हाँ बहुत हो गया ना, ऊपर से जा रहा है वो पढ़ाने कोई मतलब नहीं। चलो बेटा अब सब कोई समझ लें, जो अभी अभी ज्वाइन किए होंगे या कहीं चले गए थे अब आए होंगे, अब कल और परसों लिंक मत मांगिएगा, अब लिंक आपको मिलेगी सीधे मंडे को, और मंडे के बाद फिर सीधे संभवतः 4 तारीख को मिलेगी, 4th of January। तो अभी एक दिन का और काम बाकी है, इसमें कर लें, फिर उसके बाद 4th January से एक या दो दिन हमें कोड में लगेगा, अकोमोडेशन में, और फिर एक आध दिन देखेंगे मौका लगा, अगर हमें पढ़ उड़ पाए तो लिमिटेशन पढ़ा देंगे, और उसी के बाद हम लोग बैक टू बैक स्टार्ट कर देंगे आईपीसी, ठीक है। तो चलिए अभी एमपी का स्पेशल चल रहा है, मंडे को अब मिलेंगे अपने जो टाइम होता है उसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी बेटा लेफ्ट कर सकते हैं, थैंक यू।